मंत्र ले लिया और फिर कभी जाते नहीं, कभी यहाँ पर आते नहीं, कहीं से 10 बजे आना, ये सब होगी तो आएंगे प्रसाद पाने के समय जब सब कुछ समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं खूब उत्साह के साथ में जैसे घर का काम करते हैं इसी प्रकार से परमात्मा में भी लगना चाहिए। यदि अपने गुरु जी का, परम गुरु जी का, परम प्रार्थना गुरु जी का सुनने का परिचय ही नहीं होगा तो भजन क्या होगा। इसलिए ये सब की जानकारी चाहिए। प्रतिदिन सवेरे उठ करके सबसे पहला काम गुरु परंपरा को अपने गुरु से आरंभ करके एकदम कृष्ण राज श्रीमती राधिका इत्यादि वृंदावन धाम नवदीप धाम सब परिकरों को प्रणाम करना चाहिए। कम से कम 1 घंटा तो प्रणाम करने मिले तब तो उनकी कृपा बचेगी। तो ये सब नहीं करेंगे न जानेंगे न सुनेंगे इससे सीखते हैं बहुत ही करते क्या तो करते कुछ नहीं। जब इच्छा होती है तो कुछ कर लिया जाते हैं कभी या तो कभी कभी वर्ष में एक दो बार तो सीखेंगे कहां से। तो आज जिनका आविर्भाव तिथि है जिनका प्रकट स्नेह है जगत गुरु नित्य लीला प्रवृत्ति सिद्धांत आज सदैव उनके विषय में हम लोगों ने बहुत कुछ आलोचना किया उनके उपदेश को किन्तु हमारे प्रभु लोग अनुपस्थित कुछ लोग वो अचम घंटी बजा रहे थे कोई फूल ला रहे कोई स्नान कर रहे थे वो सब पहले हो जाना चाहिए। तो ये इनका जन्म सदा रूप में जन्म को नहीं किंतु कहा जाता है ये प्रकट हुए थे जगन्नाथपुरी में। पिताजी का नाम और गुरु जी का नाम भक्ति विनोद ठाकुर था किंतु चूंकि पिता है इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई हमको गुरु मत काना नहीं तो लोग कहेंगे बाप से बाप को गुरु बनाता है तो सब लोग अपने बाप को ही गुरु बनाना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी छिपाया और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी छिपाया। गोस्वामी कुल के भी लोग हैं उनको भी अपना शुद्ध गुरु कोई परमार्थी गुरु करना चाहिए। घर के माता पिता की गुरु और सुविधा नहीं होती उसके आदेश का पालन सबसे नहीं होगा उसमें वैसी श्रद्धा नहीं रहेगी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके गुरु होते हुए भी और प्रभुपाद खूब अच्छी तरह से जानते हैं उनके प्रति गुरु का भाव रखते हैं तभी उनके आदेश से 1906 ईस्वी में बहुत ही दूर दासाबाजी महाराज जी को उन्होंने गुरु बनाया था। तो भी कैसे गुरु बना पहले से जन्म में उनके जन्म में जनेऊ तिलक सब अपने आप स्पष्ट रूप से दिखा। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी पत्नी से कहा कि इसको महापुरुष समझो कोई महापुरुष हमारे घर में आविर्भाव है हुए हैं हमारी सेवा ग्रहण करने की पुत्र के रूप में नहीं माना भक्ति विनोद ठाकुर जी क्योंकि वो इतना है। जब वो 5-6 महीने के हुए तो अद्भुत प्रतिभा उनकी दिखने लगी। जगन्नाथ जी का रथ जा रहा था तो उनके सामने ही रुक गया रथ जान यात्रा होती है बड़ी गंडी उसी के साथ पास पास बगल में ही भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर रथ रुक गया और हाथी लगाया गया तो भी नहीं गई सब लोग हार गए नहीं गए। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने 6 माह के अपने पुत्र को लेकर के रथ पर चढ़ करके और उनके चरणों के पास ले गए अपने आप वो बच्चा उनके चरणों में लुट गया और ठाकुर जी की प्रसादी माला जो उनके गले से निकल गई वो भक्ति विनोद ठाकुर को लेकर के और बच्चे को पहना। ये बहुत शुभ लक्षण है और उन्हीं के प्रसाद से उनका अन्न प्रसन्न भी उसी से हो गया और उनका नाम रख दिया विमला मंदिर सरस्वती अर्थात विमला देवी जगन्नाथ जी की शक्ति है विमला प्रसाद इसलिए विमला प्रसाद उनका नाम विमला जी के प्रसाद से लिया। विमला जी राधा जी की प्रकाश विग्रह है इसलिए इन्होंने तो वो नाम रखा विमला विमला प्रसाद और इन्होंने अपना नाम खुद ही प्रकाश किया बागवी देवी दल कितना अर्थात श्रीमती राधिका जी के अत्यंत प्रिय दासी वो अपने आप उन्होंने प्रकाश। इसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर के साथ भक्ति विनोद ठाकुर ने 8 वर्ष की उम्र में उनको नृसिंह मंत्र दिया और दूसरे वर्ष कुर्म देव की उपासना पूजा पद्धति सब दे दी और वो छोटी उम्र में ही प्रतिदिन अर्चन करते थे प्रभुपाद। और भक्ति विनोद ठाकुर जहाँ जहाँ जाते थे प्रवचन करने के लिए, चैतन्य चरितामृत अथवा भक्तिरसामृत सिंधु और उनके जो ग्रंथ होते थे, फिर पढ़ करके अच्छुता का बच्चा आगे आगे चलता था और वहाँ रहता था। और जब तक वहाँ चला तब तक खूब मेहनत नहीं होता था। ऐसे ही हमारे गुरु जी का भी, जहाँ जहाँ उनके पिताजी जाते थे बड़े बड़े समाजों में, जहाँ पर भक्तियों की सभा होती थी, प्रवचन होता था, वहाँ पर इनको ले जाते थे। और भाइयों को नहीं ले जाते, किंतु इनको ले जाते, इनकी नीति थी। 10 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्योतिष शास्त्र एकदम व्याकरण इत्यादि तो हो ही गया, संस्कृत का वेद उपनिषद सबका पाठ किया और अंत में ज्योतिष के बड़े भारी विद्वान डिग्री गई हो। और उन लोगों ने इनको सरस्वती की उपाधि दी। सरस्वती मैंने वो संस्कृत शिक्षा की एक सबसे बड़ी उपाधि हुई है, तो वो उनको उपाधि दी। बड़े बड़े विद्वान बंगाल में उनको उपाधि दी। इसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं, मैं कॉल संस्कृत अपने जीवन चरित्र में लिखा है कि मैं संस्कृत कॉलेज में हमारे पिताजी ने भर्ती कर दिया कलकत्ते में। संस्कृत कॉलेज में 2-1 वर्ष पढ़े, इतने प्रखर मेधा के थे जो उन लोग कहीं भूल प्रोफेसरों की या प्रिंसिपलों की भूल संस्कृत में को निकाले, इसलिए उनसे बनी नहीं। इन्होंने कहा कि मैं संस्कृत का अनुस्वार और विसर्ग और व्याकरण का दुकृत
दुक्रियकरण
दुक्रियकरण ये सब करने के लिए नहीं आया। हम तो भगवान की भक्ति करने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए आए हैं। ये सब दुकृतकरण माने ये करने के लिए हम नहीं आए हैं। और अनुस्वार संस्कृत का इच्छा करते 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 सारा जीवन अनुस्वार सीखते सीखते इसके लिए बहुत है। और इसके बाद में सोचा यदि मैं ये अपने को दिखाऊं कि मैं विद्या अर्जन करने में या बहुत गुणी हूँ और सब प्रकार से मैं योग्य हो गया, तो संसार वाले लोग जल्दी से जल्दी हमारा विवाह कर देंगे और संसार का भार हमारे ऊपर में दे देंगे। इसलिए जड़भर की भांति हमको मुख बन करके रहना चाहिए, और नहीं तो हल्का जो जुआ होता है ना, या तेली का धानी का जो जुआ, जुआ माने क्या है,
जुआ
उसके कंधे पर रख लेते हैं और आंख बंद करके उसको घुमाते हैं, तेल देते हैं। ऐसे संसार वाले हमको भी घानी में लगा देंगे, इसलिए आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, बहुत कुछ हो गया। बस उन्होंने कुछ आपस में वाद विवाद हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। वाद विवाद इसलिए हुआ, बनारस यूनिवर्सिटी में उसे विभाग के जो सबसे बड़े थे उसने पदाधिकार वो कलकत्ते में गए थे और वहां पर एक विद्वत सभा बैठी और विद्वत सभा में कुछ विचार हुआ ज्योतिष का। तो उसमें ज्योतिष में विचार होने पर वो आए और बंगाल के बड़े बड़े लोग सब आए ज्योतिष विद्या के मर्म। तो उस सभा में इनको भी बुलाया गया, तो ये भी गए। वहां पर जो बनारस वाले थे जो सबसे बड़े विद्वान, वहां के सबसे उसके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनसे विचार हुआ और उस विचार में उन्होंने ऐसा पक्ष प्रतिपादन किया जो उसके शरीर से पसीना एकदम से स्तर पर हो गया। और वो पंडित प्रौढ़ था, 50-60 वर्ष का, वहीं पर पेशाब इत्यादि उनका और एकदम घबरा गया। फिर सब लोगों ने उसे पकड़ करके ऐसे वो धुरंधर थे। इसके बाद में कॉलेज से छोड़ दिया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा तू कुछ करेगा नहीं, ये पिता देवता प्रसन्न होने पर, और उसकी मैया ने कहा जैसे इसको कोई कारोबार में लगाइए तो कोई काम करता है नहीं। भक्तिनो ठाकुर अपने साथ लेकर के उनको जगन्नाथपुरी में गए और वहां पर प्रशासन मचे यहाँ पर कि पहले रघुनाथ दास गोस्वामी जी और दामोदर उस प्रशासन आश्रम में इनको वहां का सेवा का पूजा का भार दे दिया कि तुम यहीं पर सेवा पूजा करो। और यहीं पर चैतन्य चैतामृत उनसे सुनने के लिए खुद जाते थे भक्ति विनोद ठाकुर, अपने श्रोता होते थे और अपने बेटे को वहां पर वक्ता बना दिया। पहले वहां पर कम से सैकड़ों लोग आते थे, भरा भर जाता था। जब ये पाठ करने लगे तो धीरे 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 सब लोग खसकने लगे, इसलिए खसकने लगे। ये शुद्ध भक्ति की बातें करते थे, सहजियागिरी नहीं, लोगों का विरोध करते थे। उसी सभा में एक दिन चरण दास बाबा जी वहां पर आए। चरण दास बाबा जी हैं आजकल के समाजवाड़ी वाले रामदास बाबा जी थे, खूब प्रसिद्ध आदमी गाय और ये वृंदावन में पूरा उड़ीसा प्रदेश में उनका बड़ा नाम और सभी बहुत लाखों लाखों बहुत सुंदर कीर्तन करते। कीर्तन करते करते आंखों की सारा मोटी मोटी धाराएं कभी सूखती नहीं थी, ऐसा भाव निकला। तो एक दिन इनके गुरु जी चरणदास बाबा जी आए, भक्ति विनोद ठाकुर जी बैठे थे, बातचीत होते होते भक्ति की प्रभुपाद जी ने कहा। प्रभुपाद जी की उम्र अभी 22 वर्ष की 21 वर्ष की थी, तो उन्होंने उनसे कहा आप ये लोग जो कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये क्यों नहीं करते हैं? आप लोग करते हैं
कृष्ण चैतन्य प्रभु
नहीं
जय गौर राधे
हरे गौर राधे हरे कृष्ण हरे राम जप हरे कृष्ण हरे ये क्यों करते हैं? ये कहीं शास्त्र में चैतन्य के हिसाब ने या हमारे आचार्यों ने गौड़ीय वैष्णव में या वेद में उपनिषद में कहीं है जो आप लोग करते हैं? ऐसा क्यों करते? वो है निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण
हरे हरे।
वो तो बड़ा सुंदर, उन्होंने सोचा कि हम लोग ने मैदान मार लिया, एक साथ में गौर नित्यानंद और राधा कृष्ण सभी इसमें सिखा गया, कुछ बाकी रह गया। राधा कृष्ण हमारे आराध्य में बढ़ ली जाके और गौर नित्यानंद प्रभु आराध्य है वहां, बस चारों का नाम आ गया। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? कहां लिखा है? उन्होंने कहा जिसमें दोष क्या है? और ये दोष पहले से ये किसी शास्त्र में नहीं है, महाजनों का जो माना हुआ मंत्र नहीं है या कीर्तन नहीं है उसके कारण से लाभ नहीं होता, चाहे हजार अच्छा उत्पाद रेव क्यों, इसलिए अनुमोदन होना चाहिए हमारे आचार्यों का, गुरु वैष्णवों का, भगवान का। जैसे कि हम लोग कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी हैं, पीछे से नरोत्तम ठाकुर हुए हैं, सूरदास को भी ले सकते हो, मीरा देवी जी हैं, ये लोग शुद्ध भक्त थे। हम लोगों में नरोत्तम ठाकुर जी हैं, प्रेमानंद दास जी हैं, गोविंद दास हैं, पीछे से भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। इनकी पदावलियों को कीर्तन करने से भगवान उसको ग्रहण कर लेंगे क्योंकि उनके भक्त हैं, और अपने मन से हम बनाएंगे तो उसको कहते हैं छड़ा छड़ा कीर्तन, छूट कीर्तन, उससे भगवान प्रसन्न नहीं हुए, भगवान के चरणों तक उनका निवेदन नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो शरणागत भक्त नहीं है। ये लोग सब भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनके परिकर हैं, इसलिए इनकी प्रार्थना को इनकी बातें सुनेंगे। यदि रामचंद्र जी का जीवन चरित्र हम लिख करके कीर्तन करें अपने आप वो नहीं होगा, किंतु तुलसी कृष्ण रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, उसका जब हम पाठ करते हैं कीर्तन करते हैं उसका फल होगा, चैतन्य चैतामृत का फल होगा। अपने मन से बना लिया और करेंगे तो नहीं होगा। तो पहला दोष ये महाजन के द्वारा ये रचित नहीं। दूसरा अच्छा तुम निताई गौर राधे श्याम का, तो निताई गौर और राधे श्याम एक तत्व है कद यहाँ, जो निताई गौर है वही राधे। चैतन्य महाप्रभु क्या है उनसे पूछा, वो कृष्ण है और राधे कौन है इसमें से, तब उसकी बोली ना निकले। बलदेव प्रभु जी हैं नित्यानंद जी और उनके बदले ले आया वो राधा जी को, जहां पर कि कृष्ण और बलदेव वो चारण के लिए एक साथ में जा रहे हैं, एक साथ में खा रहे हैं, एक साथ में खेल रहे हैं, वहां राधा जी कृष्ण के साथ में खेलने आएंगी कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ये इसको कहते हैं रसाभास दोष। यहाँ पर यदि हमारे यहाँ निताई और गौर रहते तो राधा जी को हम लोग वहां पर नहीं बैठा, ये संभव। इसलिए महाप्रभु जी कृष्ण के रूप में वहां पर हैं और उनके साथ में राधा जी हैं, ये तो ठीक है। यदि वहां होता गौ गदाधर और राधे श्याम तो एक तरह से ये भी जोड़ी बन जाती, किंतु ये भी जोड़ी नहीं बनेगी। क्यों? गदाधर जी पुरुष, इसलिए वहां पर जोड़ी नहीं बनेगी एक साथ, उनको ये अलग प्रकोष्ठ बनाना पड़ेगा, तब ये ठीक होगा। इसलिए आप जो कीर्तन कर रहे हैं ये सब सब प्रकार से गड़बड़। एक और गड़बड़ इसमें ये है, आप कहते हैं निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण, ये जपो किसके लिए लगा रहे हैं? ये निताई गौर राधे श्याम को जप करेंगे ना, राधे श्याम निताई गौर को जप करते हैं ना, कौन जप करता है किसका? ये भी मंत्र में है ना जपो,
हाँ भज और जपो,
भज और जपो,
भज हरे।
ये मंत्र कैसे हुआ? भज से होता है ओम नमः क्लीं स्वाहा इत्यादि लगा करके सब मंत्र बन सकता है। तो ये जप को कैसे हुआ मंत्र? और उसमें भजन भजन निताई निताई गौर हे गौर निताई तुम राधा कृष्ण भज, ये अर्थ हो जाए
आदेश करने वाले।
तो ये आदेश कौन कर रहा है? चरणदास बाबा जी कर रहे हैं। ऐसा तब विचार हुआ जो वो एकदम बोल नहीं सके, उनके जितने शिष्य प्रतिष्ठ थे, अजय हमारे गुरु जी को तो परास्त कर दिया, ये 22-23 वर्ष का लड़का, बस एकदम विरोध हो गया और वहां पर उनका खूब चल रहा था चारों तरफ। लोग तो भक्ति का विचार करते ही नहीं है, केवल भेड़िया घटान की भांति लोग विचार करके चलते हैं बस। तो लोग सब प्रभुपाद का विरोध कर, यहां तक कि और बड़े बड़े भी ये आप लोग जानते होंगे, जितने बड़े बड़े जज इंडिया में हैं और बड़े बड़े वकील हैं, सब साईं बाबा को मानते हैं, भगवान कृष्ण को नहीं मानेंगे, रजनीश को मानेंगे। क्या जब उनके अकल पर क्या पत्थर पड़ेगा? वो क्या करता है कि धुआं जला देगा, धूप दे देगा, अंधकार कर देगा, आपको कुछ जाति वैद्य ऐसा कर देगा ना, जो वहां पर बैठे तो उनके हाथ में यहीं से फूल चला जाएगा। ये तो महात्मा भगवान है साई बाबा, तो ऐसा छड़ देगा ऐसा साई बाबा भगवान। वो वकील लोग और जज लोग भी ये विचार नहीं करते हैं कि सचमुच में क्या चीज है, उनको क्या नहीं पता है। अधिकांश समाज के लोग जिनको शुद्ध भूख नहीं है, ऐसे भेड़िया भसान की भांति चमत्कार देख करके और गुरु का शहर बना लेते हैं, माइक से दीक्षा इत्यादि देते हैं, तो वो सब विरोधी हो गए। और पाठ प्रवचन में भक्ति विनोद ठाकुर जो एक आदमी अपने आते थे, और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा देखो थोड़ा सा रस्सी ढीली रखनी चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़। तुम एक बात करो, तुम बिमलानंद सरस्वती बिमला, तुम को हम ले चलते हैं मायापुर में, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, यहाँ पर की जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज और बड़े बड़े भक्त लोग उसको स्वीकार किए हैं कि ये मायापुर है, वहीं पर एक छोटी सी भजन कुटी तुम्हें बना देते हैं और वहां का जमींदारी हम खरीद करके तुम्हारे नाम से वहां पर करते हैं और वहीं भगवत भजन करो। कुछ काम तो तुम करेगा नहीं, तुमको मेडिकल दुकान ही करवा दी तो तुम एक वर्ष में ही देवाला निकाल दिया। तो मैया की इच्छा है कि तुम अच्छा लड़का बनो, तो खैर तो तुम तो ये करेगा नहीं तो तुमको हम मायापुर ले जाए। उसके पहले उन्होंने काशिम बाजार के कोई राजा थे या कहां के त्रिपुरा के, त्रिपुरा के राजा थे, उनके दो लड़के थे, एक युवराज माने उनके बाद में राजगद्दी बैठेगा और दूसरा था राजकुमार राजकुमार। इनको थोड़ा सा पढ़ा दीजिए और हमारा काम थोड़ा सा देखते हैं। एक पुस्तक हमारी वंश परंपरा की चल रही है उसको आप कंप्लीट करा देंगे, संपादन आप करा दें। सबसे विनोद ठाकुर ने बहुत आग्रह बच्चे को किया जब तुम थोड़ा सा दिन जाओ। इसने देखा कि वहां पर बड़ी सारी लाइब्रेरी है वैष्णव बस, इसलिए वो स्वीकार कर। उस समय में सिपाहियों को दो रुपया महीना मिलता था, दो रुपया हम लोगों के समय में 15 रुपया तक मिलता था और उसमें अपना परिवार का सब खर्चा चला करके लड़के की शादी वादी करके घर बना करके पूरा सब रख जाता था। उसमें प्रभुपाद को 300 रुपया महीना होते थे, 300 महीना मैंने आज का 5,000-10,000 इतना उनको मिलता था। वो ऐसा पढ़ाने लगे नारद जी की शिक्षा, दोनों राजकुमारों को वैराग्य होने लगा और दिन रात भगवान के भजन में तन्मय हो। उनकी पत्नी माने लड़कों की मैया ने कहा ये महाराज हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप रक्षा इनसे कराइए नहीं तो दो दिन में हमारा लड़का बर्बाद हो जाएगा, ये रहेंगे ही नहीं, ये चले जाएंगे भजन करने के लिए, फिर राज्य कौन संभालेगा और क्या क्या होगा, आप इनको 300 के बदले में 1,000 रुपया दे दीजिए। किंतु इस बच्चों से छुटकारा दिलाए। जब रोने लगी 200 उठाने के लिए जब तैयार हो गई तो इनको उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के सभी लोग हमारे विरुद्ध हो रहे हैं, आप इसको पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको मैं इतना ही पेंशन दे दूंगा, आप हसीन नो ठाकुर की। उन्होंने कहा कि हम तो जिस काम के लिए आए थे वैष्णव ग्रंथों को देखने के लिए हमारा हो गया है और बच्चों को जो पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमको पेंशन की जरूरत नहीं है, बहुत चेष्टा की पेंशन नहीं दिया, अंत में उनके नाम से जहां प्रभुपाद आए मायापुर में वहां पर भेजते रहे किंतु उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इसके बाद में मायापुर में वो जमींदारी प्रभुपाद ने खरीद ली तो उन्होंने भक्तिनो ठाकुर ने और वहीं पर मड़ैया का मंदिर बनाया। मड़ैया समझता है ना छप्पर वाला जिसको पांच साल की अटकला घर उसको कहते हैं, माने इधर से ऐसे उधर से ऐसे इधर से इधर माने वैसा घर घाट सूत का और उसमें गौर नित्यानंद लोग प्रभु को और एक कृष्ण विग्रह भी कहीं से कोई दे दिया तो उसको पीछे से गौर विष्णु प्रिया के बदले एक और विष्णु प्रिया की मूर्ति किसने दे दी तो उन्होंने दो कर दिया, गौर विष्णु प्रिया और लक्ष्मी लक्ष्मी, पीछे से फिर राधा कृष्ण। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में 1916 में भक्ति विनोद ठाकुर जी शरीर छोड़ दिया अप्रकट हो गया। जिस समय ये अप्रकट नहीं हुए थे अभी थे उन्होंने जैसे नरोत्तम ठाकुर ने देखना है कि हमको लकवा मार गया तो वैसे इन्होंने अभिनय किया कि हमको लकवा मार गया शरीर नहीं चल रहा, तो जैसे नरोत्तम ठाकुर के शिष्य थे उन्होंने सब जातियों के बड़े बड़े श्रद्धालु लोगों को शिष्य बनाया, यहाँ तक कि ब्राह्मण लोग अधिक थे और ये कायस्थ कुल में आए। वैष्णवों का कोई जाति कुल नहीं देखना चाहिए, ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि क्या, नहीं तो नरक जाना पड़ता है क्योंकि वो भगवान के पार्षद होते हैं। किसी कारण से आ जाते हैं जगत का उद्धार करने के लिए। इसलिए अपने गुरु को ये मत समझना कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये चंडाल है, कायस्थ है, या क्या देखना चाहिए, भगवान के स्वरूप, भगवान के परिकर हमारे गुरु, भगवान के प्रकाश है, साक्षात हरि ही है, ऐसा उनको देखना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। जाति पाति वैश्यों को भी मत देखा देखना चाहिए। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर जी, नरोत्तम ठाकुर जी जब दिया तो उन्होंने जगत का काम हो गया, तब जाना चाहा भगवान के पास में, तो उन्होंने दिखलाया कि हमको लकवा लग गया है, हाथ पैर चलते नहीं। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, नरोत्तम ठाकुर जी ने, जब तुम लोग हमको पासी गंगा है, गंगा के किनारे एक मंडिया बांध करके हमको वहां पर रख दो, वहीं पर भगवान का भजन करते हुए और हम शरीर को छोड़, तो उनको चलो बड़ी श्रद्धा से गंगा के तट पर, उधर गंगा का नाम क्या है, पद्मा, पद्मा के किनारे लेकर के एक कुटी बना दी और वहीं पर दिया। से लोग वहीं पर रहने लगे और हरि कथा खूब कीर्तन चलने लग गया। वहां के जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने अपवाद लगाया, ये बहुत ही भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, नरोत्तम कायस्थ हो करके और ब्राह्मणों को शिष्य बना, इसीलिए इसको लकवा मार दिया। अब कोई चल कौन हल्ला कर बाद में भीतर
बोला
कान का बोले भी अच्छा कर, तो लकवा मार गया है। अब इनके शिष्य लोग रोने लगे, ये ब्राह्मण लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, ये लफा मार गया, ये सबको शिष्य बनाया, अच्छी बात, तो उसको क्या करना चाहिए। तो प्रभु आप चलते चलने फिरने लग जाइए और जैसे पहले रहते थे वैसे रहने, तो वो आज अच्छा गंगा में स्नान करा दो, बस गंगा में स्नान करके खड़े होकर के चलने फिरने दौड़ने फिरने लगे और अपने घर में चले। देखा ये क्या हो गया, पीछे में तीन पद कीजिए, यहाँ आ जाए, चलने फिरने एकदम घर में आ गए, ब्राह्मणों को पता लगा यार ये तो ठीक है पूरे। अब उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और भी बहुत सी कथाएं इसमें, उनको परास्त करवाया अपने शिष्यों से, तब फिर उनके आहार करके क्षमा मांगने लगे। फिर 6 महीने के बाद में फिर अपने पद्मा के किनारे जाकर के ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी अंतिम काल में उन्होंने दिखलाया कि हमको बीमारी लग गई, जाने में कुछ न कुछ दिखना दिखलाना पड़ता है, बस जान बूझ करके लगवा उनको बीमार गया। तो उस समय में एक बहुत बड़ा भारी विवाद खड़ा हुआ, विवादित हुआ कि ब्राह्मणों में और वैष्णव में 10 बजे तो आ नहीं सकते, 10 बजे बुलाया सबको कोई नहीं लाइए, यदि आए तो आपका मोहल्ला ही ऐसा है, अब आपका मोहल्ला भी बूढ़ा हो गया। भक्ति विनोद उसमें एक विवाद, ब्राह्मण बड़ा है कि वैष्णव बड़ा है, क्योंकि उसमें प्रभुपाद जी खूब जोर से प्रचार आरंभ किया, भक्ति विनोद ठाकुर ने गांव गांव में तो हरिनाम मंडप स्थापित करके सर्वत्र प्रचार करना। अब उस समय नवदीप की और इधर की ऐसी स्थिति हो गई, जो महिलाएं जो ब्राह्मणों की हैं जाकर के गुणहीन ब्राह्मण को भी पूजा करती थी, अब उनका रुख बदल गया, वो अपना थाल और सब कुछ लेकर वैष्णों के सामने पहुंच करके खाना पीना फल मूल इत्यादि का दान दक्षिणा वैष्णों को आदर करने लग गए, अब उनकी रोजी रोटी उठने लग गई, इसलिए वो लोग वैष्णों के विरोधी घोर विरोधी हो गए। उन्होंने कहा प्रभुपाद को एक बार जान से मार डाला जाए, ऐसे भी परिकल्पना है, नहीं तो हमारी रोटी एकदम सब उड़ा देगा और सब लोगों का समाज का मूड ही दूसरा तरह का हो जाएगा, ब्राह्मणों को कोई पूछेगा ही नहीं। इसलिए एक बड़ी भारी सभा बैठी मेदिनीपुर के अंतर्गत बालीघाई नामक स्थान, उसमें भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े ब्राह्मणों के पंडित थे, काशी में, मिथिला में, दक्षिण भारत में, कांची में, विष्णु कांची, शिव कांची में, उन सबको उन लोगों ने बुलाया और वैष्णव को चैलेंज दिया कि ये लोग साबित करें कि ब्राह्मणों से हम लोग से कौन से शैली रखा था। हजारों बड़े बड़े स्मार्ट और काशी से बड़े बड़े सुरंधर विद्वान लोग और बंगला के न्याय पंच रत्न और षडरत्न और क्या क्या सब वहां पर उपस्थित हुए। अब वैष्णु में सहल का मच गया, इनके साथ में कौन विचार करे, ये तो बड़े बड़े सुरंधर विद्वान है, संस्कृत में लड़कल भाषण करते हैं, कौन विचार करेगा। अंत में सब लोग मिलकर के भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ गए, कहा जी प्रभु अब लाज आपके हाथ में है, अब किसी प्रकार से बचाइए, नहीं तो वैष्णव धर्म समाप्त, पृथ्वी से एकदम निश्चिन्ह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अब वृद्ध हो गया और साथ साथ में मैं चल नहीं सकता, मुझको लकवा भी मार दिया तो मैं तो जा नहीं सकता, तो फिर क्या किया जाए। तो हम लोग नहीं जाएंगे, विचार नहीं होगा, एक तरफा उनकी जीत हो जाएगी और फिर गड़बड़ हो जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़े दुख से कहा कि आज ऐसा कोई नहीं है जो वैष्णव का पोषण कर सके, वैष्णव धर्म की जहाज मिल जाएगी। तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा था, वही
विमला
प्रसाद सरस्वती, अब उनका नाम सिद्धांत सरस्वती हो गया भी था। तो उन्होंने कहा कि आप आदेश दीजिए और अपने चरणों की धूली हमारे सिर पर दर्ज कर दीजिए, मैं जाता हूं। छोटा सा बच्चा और उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया, कहिए जाओ। और उनके साथ में वृंदावन के राधामरण घेरा के मधुसूदन गोस्वामी सरस्वती गोस्वामी बहुत विद्वान आदमी थे, वैष्णव थे, उनको बुलवा करके वृंदावन से उस बच्चे के साथ में ले जाए, जैसे अभिमन्यु लड़ने जा रहा है उनकी रक्षा करने के लिए कौन जाएगा, भीम सिंह गला लेकर के जा रहे हैं, ऐसे इन लोगों को और एक कोई और विद्वान थे जिनके साथ हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर जानते थे ये बड़ा पुरंदर है, इसलिए वहां पर भेजा। वहां पर हजारों आदमी सब बड़े बड़े विद्वान सब जुटे हुए, वैष्णव की तरफ से मेदिनीपुर में कुछ वैष्णव लोग हैं, वो लोग कुछ लोग और ये तीन आदमी नवदीप से गए। अब जब सभा बैठी तो एक कुंज में सभा हो रही थी, ऊपर में मालती पुष्प था। जब सभा होने को आरंभ हुआ तो मालती का गुच्छा ऊपर से भक्ति प्रभुपाद जी के ऊपर में अपने आप वो गिर
गया
और सब वैष्णव लोग जय जय कार करने लगे। बड़ी प्रसन्नता हुई, आज जैसे तैसे जीती हुई जीत होगी, वैष्णव का जीती होगी और उनका मुख कुछ को भुला गया। अब उन्होंने कहा कि पहले तुम बोलो, तुम विचार करेगा वैष्णव धर्म से। उनकी उम्र 60, 70, 80, 90, बड़े बड़े ब्रह्मधर पगड़ी बांधे हुए
मोटे मोटे लाल,
और ये अभी छोटा सा बच्चा दुबला पतला, ये बचपन में बहुत दुबले थे, एकदम पतले जैसे बड़ी प्रखर बुद्धि थे। तो इनको सब लोगों ने कहा तो ये उठ करके बच्चा खड़ा हुआ और बोलना आरंभ किया, गुरु जी का जैसे वंदना करते हैं, वंदना करके जय देना आरंभ करके और बोलना बोले आरंभ करके, पृथ्वी में सबसे बड़े ब्राह्मण वो सबके पूज्य हैं, इसलिए इनको भूसुर भूसुर माने पृथ्वी का देवता कहा जाए, ये सब पृथ्वी के देवता ब्राह्मण लोग हैं, सब प्रकार से इनका पूजन करना चाहिए। भगवान भी इन्हीं लोगों के लिए जगत में अवतरित होते हैं।
नमो ब्रह्मण देवाय,
नमो ब्रह्मण देवाय, वो ब्राह्मण ब्राह्मणों के लिए आते, ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान हैं, तो साधारणों के लिए तो क्या होना चाहिए। शास्त्र में जितना ब्राह्मणों की महिमा थी सबको उन्होंने बतलाया। बतलाने के बाद में ये लोग बड़े ताली दे रहे हैं, तुम्हारे ब्राह्मण लोग और ये सब जो आए हैं, ये तो सुंदर सुंदर बात कह रहा है और इन्हीं लोगों का ये अनुमोदन कर रहा है, तो ये क्या वैष्णव की तरफ से बोलेगा, ये बहुत ठीक है। अंत में जब खूब तालियों की बजा दिया तो ये कहे वैष्णव लोग बड़े हैं, ब्राह्मण लोग बड़े हैं, ये बात ठीक शास्त्र अनुमोदित है, किंतु ब्राह्मण किसको कहते हैं? यही पर आप मुझे ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जाना कि जो ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म कौन है? यदि निराकार ब्रह्म है तो उसको कोई जान नहीं सकता, उसको जानना बेकार का बकवास है। यदि निराकार निरंजन निर्गुण अव्यक्त अनादि रहे तो वो ब्रह्म जानने जो ही नहीं है, अवांग मनुष्य गोचर के अतिरिक्त उसकी प्राकृत अप्राकृत कोई धारणा नहीं हो सकती। इसलिए इस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण जानने वाला कहां से आरंभ होगा? नारायण तत्व को जानने। सर इस पर जय है, लक्ष्मीपति जो नारायण है, वैकुंठ में जो निवास करते हैं, इस जगत की स्थिति प्रलय हुआ है, उनको जानने वाला। किंतु ये सर्वोत्तम ब्राह्मण नहीं है। सर्वोत्तम ब्राह्मण कौन है? ब्रजनंदन श्याम सुंदर को राधिका के सहित में जानने वाले और उनकी सेवा करने वाले, उनमें ही प्रवृत्त होने वाली सेवा में, ऐसे लोग यथार्थ ब्राह्मण और कोई ब्राह्मण है? उसको बैठा पद्मासन, पागल उसको पकड़ कर घर में बैठा। तो बोल, ये है ब्राह्मण। राधा कृष्ण के नित्य जो उपासक सर्वश्रेष्ठ उपासक हैं, वही यथार्थ ब्राह्मण है। कजे कैसे? उनको कहते हैं वैष्णव। वैष्णव में ब्राह्मणता अपने आप होती है। एमए क्लास पढ़ने वाले को क्लास वन जरूर पास करना होता है। क्लास वन नहीं पास करेगा तो एमए में कैसे पहुंचेगा? इसलिए एमए क्लास वाला छात्र को कहा जाए जिसने क्लास वन टू थ्री नहीं पास किया, तो ये भूल है। उसके लिए ये नहीं कहना है ये क्लास वन पास किया है कि नहीं। क्लास वन का सर्टिफिकेट, एमए का सर्टिफिकेट दे रहा है, तुमने क्लास वन का पास किया कि नहीं, तुम सर्टिफिकेट ले आओ, नहीं है तो हम नहीं माने। एमए का दे रहा है किंतु उसको नहीं। ऐसे ही जो वैष्णव है, विष्णु की आराधना करने वाले, विष्णु कौन है? प्रस्तुति बृंहति बृंह अरे फारो विक्रीड़ती बजुबद विष्णु। विष्णु कहने से यद्यपि हमारे साक्षी का भी बोध होता है, नारायण भी विष्णु है, प्रणाम भी विष्णु है, कृष्ण भी विष्णु है, नंद नंदन भी विष्णु है, किंतु विष्णु नंद नंदन है। राधा कांत सर्वश्रेष्ठ विष्णु का, उन्हीं से सब कुछ निकलते हैं। इसलिए ये जो आराधना करते हैं ये वैष्णव का अपने आप है, किंतु ब्राह्मण में वैष्णवता नहीं रहने से वो सब कुछ बेकार का है। शास्त्रों का प्रमाण उन्होंने दिया, जन्म से जाति नहीं होती, किसे होती है? गुणों के और कर्मों से। चतुर कर्म विभाग, ब्राह्मण का में भगवान विष्णु की आराधना करने का गुण नहीं है तो वह शूद्र चंडाल। केवल जनेऊ रूपी सूत्र धारण करने से ही वो ब्राह्मण नहीं।
ब्राह्मण तत्व ना जाना से
ब्राह्मण तत्व तो नहीं जानता,
ब्रह्म
सूत्र क्यों धारण करता है तो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। जो भगवान की पूजा करता है वो शूद्र हो, जाति से होने पर भी तत्मय देयम तत्व ग्राह्यम सोचो पूज्यो यथा, वो हमारे समान पूज्य है। उनका कुल जाति ये सब नहीं देखना चाहिए, उनका तत्व ज्ञान देखना चाहिए। यथार्थ में आत्मा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, न शूद्र है, और शरीर जो मिट्टी है मर जाने के बाद में या रहने पर भी क्षत्रिय है कि वैश्य है, न क्या है, इस सबसे न किसका भी मूल्य है। वो तो भगवत भजन कराने के लिए लोगों को समझाने के लिए इस तरह के तारतम्य बने थे, किंतु अंत तक वैष्णव पहुंचने के लिए ये सब जब भाषण देने लगे और शास्त्रों से सब बतलाने लगे तो सबका मुख एकदम हो गया, कोई उठा ही नहीं। सब लोग धीरे 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 जितनी पगड़ी थी अब पगड़ी और वह रही नहीं, पगड़ी समेत उठ करके चले गए और केवल वैष्णव लोग रह गए और उस महावी जीत हो गई। अब चारों तरफ में वैष्णव धर्म का डंका बजने लगा, धीरे धीरे मायापुर में मंदिर होने लग गया और सब तरफ में वैष्णव धर्म का। आज भी यहाँ पर भी हमारे यहाँ जब हम लोग यहाँ हैं तो यहाँ के मथुरापुरी के लोग आते हैं, महाराज आज हमारे यहाँ एक कोई उत्सव है, कोई ये काम है करना है, कोई गृह का पत्थर करना है, मुझे क्यों भाई ब्राह्मण से करा दो। कोई कहते हैं हमारे घर में आज हमको कुछ वैष्णवों को खिलाना है, भाई ब्राह्मणों को खिला दो। नहीं, हम लोगों को ब्राह्मणों पर कोई रही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का उनका कोई संबंध नहीं है, वो काम कराने के पहले ही दक्षिणा के लिए मरते लिखते हैं। यमुना जी ने खड़ा करके और कहा पहले दक्षिणा दो, एक गाय को दान करो तब हम तुमको मंत्र बोले। इसलिए धीरे 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 उन पर विश्वास सब दूर होता गया, वैष्णवों पर वो श्रद्धा आती गई। इस तरह से धीरे धीरे इन्होंने प्रचार आरम्भ किया। इन्होंने बहुत संबंध, इनके संबंध में बहुत कुछ है। देखो जी भोग लगा है कि नहीं,
भोग लगा
आती भी हो गई। अच्छा तो ठीक, हम आप लोग जैसे अभी आए हैं थे 4 बजे के करीब में या 4:30 बजे तक जरूर आ जाएंगे। हमारी बहुत मैंने जो नोट किया था जी ये कहेंगे उसमें अभी पहले प्रस्तावना ये कर रहा था, प्रस्तावना अभी तो असल बातें सब रह गई। वो भी कितना अच्छा है आनंद इनका जीवन चरित्र, जो इसको इनका जीवन चरित्र सुनेगा वो जरूर वैष्णव हो जाएगा, निश्चित या वैष्णव। इनका जीवन ही चरित्र ऐसा तो उन्नीस सौ 1977 में वो करीब 18 वर्ष के करीब उनकी उम्र थी, 1900 में करीब ऐसे 26। तो उस समय में प्रभुपाद जी को उन्होंने रख दिया था मायापुर में उनकी सेवा, अब वहीं से प्रचार आरंभ किया। जिनका उन्होंने खंडन किया था वो चरणदास बाबा जी इत्यादि, मायापुर धाम की परिक्रमा और महोत्सव उन्होंने जब आरंभ किया तो वो भी अपने हजारों लोगों के साथ में उसमें जुड़ गए और बोले कि मैं यद्यपि कुछ ये लड़का प्राप्त जाती है तभी तो मैं प्रति वर्ष नवदीप परिक्रमा के समय में जन्मोत्सव में मैं जरूर आया। उस समय में यात्रा भी प्रभुपाद ने और युवतियां ने यात्राएं रासलीला जैसे यहाँ पर होती है ना, प्रभुपाद इसके घोर विरोधी है, हमारे गुरु जी भी सब लीलाओं के घोर विरोधी हैं, क्योंकि उनमें कोई आचरण नहीं है, इसलिए वो सब देखने का एक सहजी अभाव है, यथार्थ में भजन साधन हम लोग नहीं करते, इसलिए इसके घोर विरोधी। तो अभी उन्होंने लोक संग्रह के लिए 1-2 वर्ष पहले कराया, इसके बाद तो परिक्रमा को हजारों आने लग गए फिर कुछ हो। तो ये उन्होंने भी कहा था जब हम आएंगे, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर के जाने के बाद में फिर इनका भी और लोक गमन हो गया, इसलिए तब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी ने वो 9 दीपों में 9 आश्रम स्थापित किए और सबकी विधिवत परिक्रमा आरंभ कर दिया। ये 1900 उसके पहले 1900 में उन्होंने वो जहां पर भक्ति विनोद ठाकुर सानंद सुखद कुंज में रहते थे गोद्रुमदीप वहीं पर इनको रखा था, उनके साथ में रहते थे। वहीं पर एक वृद्ध और आंख के अंधे एक महापुरुष आए और भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको जैसे सम्मान किया और वो जैसे परस्पर प्रश्न और उत्तर कर रहे हैं, गौर किशोर दास महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं
और भक्तिविनोद ठाकुर जी उनका उत्तर देते हैं। ये सब भी जय धर्म में जो प्रश्न उत्तर देखता है ना, अधिकांश वो सब चीजें हैं। नाम अलग से दे दिया है ये सब चीजें। तो वो महापुरुष प्राय नवद्वीप में रहते थे, पहले रहते थे यही ब्रज में, पीछे से नवद्वीप में चले गए। आंख नहीं रहने पर भी लखिया टेक करके बहुत दूर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। मैं इधर से नवद्वीप से पुकारते और पुकारते पुकारते गंगा को पार करके और भक्ति विनोद ठाकुर के आश्रम में जाते, हम लोग परिक्रमा में वहां पर जाते। इन्होंने देखा कि अद्भुत तो ये, लिखना पढ़ना तो जानते नहीं है, आंख नहीं है, किंतु परतत्व के संबंध में इतने परिपक्व, जो भक्ति विनोद ठाकुर से इन सब बातों को जो हमने कभी सुना नहीं और ये सब विचार करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर से कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो ये महात्मा जी के चरणों में मैं दीक्षा दूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं और बाबा जी महाराज जी को कहा, इनको कहा कि तुम जाओ बाबा जी महाराज के चरणों में गिर करके प्रार्थना। ये तो समस्त दर्शन वेद उपनिषद पुराण सब पारंगत उनके चरणों में गिर करके बोले जी भाई, बाबा जी महाराज आप हमको दीक्षा दी, आपसे मैं दीक्षा। अरे मक्का ना, तुम भक्ति विनोद ठाकुर का लड़का, इतना बड़ा विद्वान, संस्कृत हिंदी अंग्रेजी बंगला सब विषय में धुरंधर, तत्व सिद्धांत में भक्ति में तुम इतना से, तुमको मैं हरिनाम दीक्षा नहीं। उनका जिसे आप नहीं देंगे तो हम भी प्रतिज्ञा करते हैं आप ही से लेंगे, और नहीं ऐसे ही मर जाएंगे किंतु। वो तो चले गए, बीच में आते जाते तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं देंगे।